فاتحہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین، والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، خاتم النبیین، رحمۃ للعالمین، ابی القاسم محمد. وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، لا سيما بقية الله في الارضين. اما بعد، فقد قال الله سبحانه وتبارك وتعالى في محكم كتابه وهو اصدق القائلين وقوله الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فان تنازعتم فی شیء فردوه الی اللہ والرسول ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ذالک خیر و احسن تاویلا. صلوات. آج کی مجلس ہمارے نو مجالس کے سلسلے کی پانچویں مجلس ہے. سلسلے کا عنوان امامت ہے، اور جو آیت میں نے انتخاب کی وہ سورہ نساء چوتھے سورے کی 59 آیت ہے. آیت حکم کر رہی ہے مومنین کو کہ اطاعت کریں اللہ کی، رسول کی، اور اولی الامر کی. چار مجالس کا بہت ہی مختصر سا خلاصہ. بات یہاں سے آگے بڑھی تھی کہ اللہ کہہ رہا ہے ایمان والوں کو کہ اطاعت کریں اللہ کی اور رسول کی، اور رسول کے بعد اولی الامر کی بات کی جا رہی ہے. اولی الامر کس کو کہتے ہیں؟ یہ بہت ضروری اس لیے ہے کہ رسول کے بعد سے لے کر آج تک ہم کو اس راستے کو سمجھنا ہوگا کہ رسول کے بعد کا سلسلہ ہدایت کا کیسے آگے بڑھے گا. اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے آیتوں کی تلاوت کی. دوسری مجلس میں آیۃ تطہیر کی تلاوت ہوئی. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ پاکیزگی اولی الامر میں ہونا ضروری ہے. حکم کرنے والوں میں اگر پاکیزگی نہ ہو تو رسول کے ساتھ جوڑے نہیں جا سکتے. اللہ کے ساتھ رسول کا جڑنا ثابت ہے. وما ینطق عن الہوا کی بنیاد پر رسول اپنی ہوائے نفس سے گفتگو نہیں کرتا، مگر یہ کہ یہ وہی ہوتی ہے جو وہ کہتا ہے. یہ قرآن کی آیت سے رسول کی عصمت ثابت ہو چکی. اب اس کے بعد ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ سب سے قریب جو رسول کے ہوگا اس کی بات مانی جانی چاہیے جو ظلم سے بری ہو، ظلم اس سے صادر نہ ہوتا ہو. اگر خدا نہ خواستہ اولی الامر سے ظلم کی ہدایت ہونے لگے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ عدالت کا بھی حکم کرتا ہے، ظالمین سے نفرت بھی کرتا ہے، اور ساتھ میں ظالمین کی اطاعت بھی کروا رہا ہے. صلوات بھیجے بر محمد و آل محمد. یہ محالے ہو نہیں سکتا. ایک عام عاقل یہ کام نہیں کرے گا. سبحان اللہ، وہ کیا کام کرے گا اس طریقے سے. تو یہ ثابت ہے اللہ کی شان سے کہ بروں کی وہ امامت کو، ظالمین کی قبول نہیں کرتا. یہ نص قرآن بھی ہے 124 آیت سورہ بقرہ کی جو ابراہیم کی امامت کے سلسلے میں تلاوت کی گئی. उसके बाद आयत मैंने तिलावत की तीसरी और चौथी मजलिस में, जिसकी मैंने कुछ तौजी दी, वो आय मवद्दत थी कि जब अजर मांगा ही नहीं जा रहा हो, जब अजर मांगा ही नहीं जा रहा हो, बार बार कहा जा रहा है कि ये हमने फकत और फकत हिदायत के लिए भेजा है, हमको तुमसे कोई अजर नहीं चाहिए। तमाम रसूलों की भी रविश रही है, हमारे रसूल की भी यही रविश रही है कुरान में, बार बार ये आयतें आई हैं, लेकिन एक जगह पर ये आयत आ जाती है कि मैं मवद्दत मांगता हूं अजरे रिसालत के उन्वान से। ये मांगने का सबब भी बिल्कुल वाज़े है कि ये क्या मकसद था, यही बात को आज की मजलिस में मैं आगे बढ़ाता हूं। जैसे ये आये मवद्दत आई 23वीं आयत सूरह शूरा की, 24वीं आयत हमको मिलती है अम यकूलून अफ्तराहु अलल्लाही कज़िबा, क्या ये कहते हैं कि रसूल ने अल्लाह पर झूठ बांध दी, क्या रसूल ये कह रहे हैं जो कुछ कह रहे हैं ये अल्लाह पर झूठी तोहमत तो नहीं लगा रहे हैं कि अल्लाह चाहता है, क्यों कि इब्तिदाए आयत क्या है, कुल्ला असलुकुम अले अजरन, ए रसूल कह दो इनसे, रसूल अपनी तरफ से नहीं कह रहे, अल्लाह कहलवा रहा है आयत में, तो आयत यहां हो क्या रही है 24वीं आयत खुल अम या के बाद जो वाया है अम यकूलूना तरा अल्लाही कज़िबा, क्या ये कहते हैं कि रसूल ने अल्लाह पर झूठ बांध दी, ये कहकर के मेरे आल से मोहब्बत करो, मेरी खुरबा से मोहब्बत करो, मेरे रिलेटिव से मोहब्बत करो, ये बात क्यों हो गई। अरब में कबायली निजाम था, कबायल ट्राइब्स का इख्तदार था, और ट्राइब्स के जो बड़े बड़े सरदार होते थे वो कंट्रोल करते थे ट्राइब को, और इनकी जिंदगी बिल्कुल ही अलग होती थी, अदालत और इंसाफ इनके पास कोई चीज नहीं होती थी। रसूल ने आकर जैसे तमाम रसूलों ने किया अदालत बरपा की, और मदीने में अदालत की बात होने लगी, इस्लाम को कबूल किया जाने लगा, ताकत इतनी हो गई इस्लाम की कि अतराफ के कबाइल और उनके जो लीडर थे बड़े बड़े वो भी मजबूरन कबूल करने को तैयार हो गए, इस उम्मीद के साथ कि रसूल के बाद ये सब बातें खत्म हो जाएंगी, हम फिर पुरानी हालत में आ जाएंगे। अब इनकी उम्र हो रही है, इनको बर्दाश्त कर लो, या मर जाएंगे या मार दिए जाएंगे। और इस मौजू को कुरान बार बार छेड़ता है, वमा मोहम्मदुन इल्ला रसूल खत खलत मिन खबलिहि रुसुल अफा इम्माता औ खुतिल लन कलबतुम अला आकाबिकुम वमन यतकलब अला आकिबैह लन यज़ुरुल्लाह शैया, ये कुरान की आयत है। अल्लाह कह रहा है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं है मगर रसूल, खत खलत मिन कबलिहि रुसुल, इनसे पहले भी रसूल जा चुके हैं। अफा इम्माता औ खुतिला, अगर ये मर जाएं और या मारे जाएं तो क्या तुम पलट जाओगे दीन से, और जो पलट जाएगा वो अल्लाह का कोई नुकसान नहीं कर पाएगा। यानी ये बात अल्लाह पेश कर रहा है कि तुम्हारी आरजू यह है कि रसूल मर जाएं और उसके बाद तुम पलट जाओ, याद रख लो जो पलट जाएगा अल्लाह का नुकसान नहीं कर सकता। यहां पर यही हुआ, जैसे मवद्दत की आयत आई वहां पर दूसरी आयत आकर कह रही है ये लोग कह रहे हैं कि आपने झूठ बांध दी अल्लाह पर। सिलसिलेवार आगे आयत बढ़ते हुए यह बतलाती है कि कुछ लोगों ने यह जो कहा था कि अल्लाह पर रसूल ने झूठ बांधी, वो वापस अपने अल्फाज को लेते हैं और उनके अल्लाह के तौबा कबूल करने का भी ऐलान उसी आयत में होता है। तो इतनी मुश्किल होती थी क्योंकि सिलसिला खत्म होना पसंद करते थे, रसूल के बाद रसूल का सिलसिला रुक जाए, ये पूरी की पूरी आरजू थी। इसी ज़ैल में सूरह मायदा की जो मशहूर आयत है, बल्लिग मा उन्ज़िला इलैक या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उन्ज़िला इलैक मिन रब्बिक फइन लम तफअल وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ। یہ مشہور آیت سورہ مائدہ کی، مائدہ شان نزول کے حساب سے 114 سورے ہیں قرآن میں، मायदा सबसे आखिरी सूरों में आता है। 114 में शान नुजूल के हिसाब से 110वां सूरा है, यानी रसूल की जिंदगी के आखिरी सूरों में आपको ये सूरा मिलता है, ये सूरा आखिरी सूरों में मिलता है। तो अब जब ये सूरा आखिरी सूरों में है तो इसके बारे में आम है कि जितनी आयतें मायदा की है उसमें कोई मनसूख आयत नहीं है, कोई आयत ऐसी नहीं है सूरह मायदा की जिसको कहा जाए कि कोई और आयत आके उसको हटा दी है अपनी जगह पे से। तो यहां पर ऐलान हो रहा है, रसूल कह दो, तबलीग कर दो, बल्लिग हुक्म है, इंपेरेटिव है, ये माना में कि तबलीग कर दो, क्या कर दो, वो चीज जो अल्लाह के तरफ से तुम पर नाजिल की गई है। वह इन लम तफअल, और अगर तुम ये नहीं करोगे तो ऐसी बात हो जाएगी कि जैसे कि तुमने रिसालत का काम अंजाम ही नहीं दिया अल्लाह की। वह इन लम तफल फमा बल्लगता रिसालतहू, हु की ज़मीर अल्लाह की तरफ पलट रही है। और अगर हालात ऐसे हैं कि लोग पलट जाएंगे, अल्लाह तुम्हें लोगों से बचाएगा। अल्लाह यासिमुका मिनन्नास, अल्लाह लोगों से तुमको बचा लेगा, और बेशक अल्लाह काफिरीन की हिदायत नहीं करता। ये आयत आ जाती है, सुन्नी मुफस्सरीन ने भी इसका शान नुजूल लिखा है, बहुत से उन्होंने लिखा है, कुछ ने माना है, लेकिन लिखा बहुत से उन्होंने है, जो लिखा है कुछ ने माना है, कुछ ने नहीं माना, लेकिन बड़े बड़े नाम है जो मानते हैं कि ये आयत सबब बनती है गदीरे कुम की। इन जो हदीस मशहूर है, मन कुंतु मौला हो फहाजा अलीयुम मौला, या मन कुंतु मौला हो फअलीयुन मौला, ये एक, और वो मशहूर सकलैन वाली रिवायत, इन्नी तारिकुम फीकुम उत्तकलैन किताब अल्लाही व इतरती अहल बैती इन तमस्सकतुम बेहिमा लन तजिल्लु बादी व इन्नहुमा लन यफ्तरका हत्ता यरदा अलैयल हौद। ये एक, ये दो चीजें, एक तो मौला का ऐलान कि मैं अगर तुम पर मौला हूं तो ये अली भी मौला है या अली मौला है, कुछ जगह हाजा है कुछ जगह हाजा नहीं है, तो मन कुन तो मौला हो फ अली उन मौला। मुख्तलिफ अहले सुन्नत के रावियों ने उनकी मुस्तनद तरीन किताबों में यह हदीस नकल की है, इसके साथ के रसूल ने कहा कि क्या मैं मोमिनीन पर उनकी जान से ज्यादा हक नहीं रखता हूं, कुरान की आयत को कोट करते हुए, रसूल औला बिल मोमिनीना मिन अनफुसहिम, इस आयत को कोट करते हुए रसूल ने मजमे से कहा कि क्या मैं तुम पर फौकियत नहीं रखता हूं, तुम्हारे नुफूस पर तुमसे ज्यादा हक नहीं रखता हूं। सबने हां हां कहा, उस वक्त कहा मन कुंतु मौला हो फअलीयुन मौला हो। ये सलवात भेजे मेरे मोहम्मद वाले, साथ ही साथ आपको ये हदीस भी बिरादरा ने अहले सुन्नत के यहां कसीर तादाद के हदीस नकल करने वाले सहाबा अहले सुन्नत के सोर्सेस 25 से ज्यादा हैं जो 25 असाब से नकल किए गए हैं। जमा करने वालों ने 110 असाब से इस हदीस को नकल किया है, इसको तवातुर कहते हैं। इतनी तादाद में नकल किया गया है कि इसके बारे में कोई शक हो ही नहीं सकता, कोई शक नहीं हो सकता। और आज के बड़े सुन्नी उलमा इस बात को खुलकर अब बयान कर रहे हैं, अब खुलकर बयान कर रहे हैं। मतलब क्या है? मतलब यही है, इन्नी तारिकुम फीकुम सकलैन, मैं दो गिरां कदर चीजें, सकलैन कहते हैं अगर पढ़ते हैं तो दो गिरां कदर चीजें होता है, सकलैन अगर पढ़ते हैं तो दो तोशे, यानी वो चीजें जो तुम्हारी जिंदगी के सफर में हिदायत का तोहफा होंगे। सकलैन अगर पढ़ते हैं, लिखा जाता वैसे ही, सकलैन लिख दीजिए आप या सकलैन लिख दीजिए, से को हाफ को मिलाया जाता है सकलैन में, सकलैन में दोनों पर जबर दिया जाता है, तो सकलैन मतलब तोशे हो गए, दो तोशे। या गिरां कदर चीजें छोड़े जा रहा हूं, किताब अल्लाही, अल्लाह की किताब, इतरती और मेरी फैमिली, अहले बैती, मेरे अहले बैत, इन तमस्सक तुम बेहिमा, अगर तुम इनसे तमस्सुक इख्तियार कर लो, लन तजिल्लु बादी, मेरे बाद तुम गुमराह नहीं होंगे हरगिज। वह इन्नहुमा, और बेशक ये दो कुरान और अहले बैत, नहीं अफ्तरका, ये आपस में अलग नहीं होंगे, मगर ये के हौजे कौसर पर योजे कियामत मेरे यहां आकर न मिलने। कुरान और अहले बैत कब तक जुदा नहीं होंगे? हौजे कौसर तक जुदा नहीं होंगे, यानी दुनिया में जुदा ही नहीं हो सकते। जब ये मौजूद हो तो अब आप अंदाजा लगाइए कि किस तरीके से अल्लाह अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्र मिनकुम की हिफाजत कर रहा है कि अगर उसमें जुल्म आ गया किसी बहाने से तो कुरान की तालीमात ऊपर नीचे हो जाएंगी। नेकी पर आयतों पर अमल नहीं होगा, खुद गर्जी पर आयतों को हमल किया जाएगा। शैतानी नीयतें कुरान की आयतों की मदद से आगे बढ़ाई जाएंगी, खुदा की मोहब्बत सबब नहीं बनेंगी। ईमान बिल्लाह और यौमिल आखिर जो शर्त है, अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्र मिनकुम फइन तनाज़तुम फी शयइन फरुद्दूहु इलल्लाहि व रसूल इन कुंतुम तूमिनूना बिल्लाह, ईमान का मामला गड़बड़ हो जाएगा। अब जो आयत रसूल को आ रही है कि बल्लिग मा उन्ज़िला इलैका मिन रब्बिक, और अगर ना आप ये पहुंचाएं तो आप बता दीजिएगा कि अगर रसूल के बाद हिदायत अगर उलिल अम्र के जरिए से आगे न बढ़े और हर कस और नाकस के कुछ मुद्दत के बाद रसूल के 30 साल के बाद मुआविया तख्त पर बैठ जाता है खिलाफत के, और उसके 19 साल बाद 18-19 साल बाद हमको साफ दिखता है कि यजीद जैसा तख्त पर बैठ जाता है। अब जब यजीद जैसा तख्त पर बैठ जाए तो मुमकिन ही नहीं है कि इस्लाम का काम हो। माविया जैसा बैठ जाए जो यजीद को बिठाए तो और भी काम ना होगा। तो जो अदालत की आवाज थी, जो सबब खिलकत इंसान है कि दुनिया में जाके जुल्म नहीं करेगा, खून नहीं बहाएगा, जो फरिश्ते कहते हैं ये तो फसाद करेगा और खून बहाएगा, फसाद यानी जुल्म, खून बहाना उससे बढ़कर जुल्म। अतज अलोफीहा मैं युफ्सिदूफीहा वह यस्फिकुद्दिमा, ये फरिश्ते आदम की खिलकत पर अल्लाह पर तनकीद करते हुए कहते हैं, क्या तू ऐसे को वहां पर अपना खलीफा बनाएगा कि जो जाकर वहां फसाद करेगा और खून बहाएगा। अब अल्लाह ने एक पाक दीन दिया, अब उस पाक दीन की पाकिजगी की हिफाजत नहीं करता, रसूल के बाद कोई पाक ही नहीं है, तो आए तथीर मैंने बार बार कहा है, अल्लाह फजीलत बराए फजीलत ना अल्लाह अपनी बयान करता है, हाजत नहीं, ना रसूल की बयान करता है, हाजत नहीं है, ना अहले बैत की बयान करता है, हाजत नहीं है। हर हर फजीलत में हिदायत और इताअत मुजमिर है, छिपी हुई है। अल्लाह को अपने बंदों की तारीफ कराने से क्या मिलने वाला है, उसकी शान देखिए और हमारी तारीफ। जब जब कहता है मेरी याद करो, इसलिए कहता है कि जब मेरी याद करोगे तो तुम्हारी रूह परवाज में आ जाएगी, जब रूह तुम्हारी परवाज करेगी तो मेरी बात तुम्हें समझ में आ जाएगी, जब मेरी बात समझ में आ जाएगी तो मेरी नुमाइंदगी तुम कर पाओगे। अगर तुम्हें मेरी बात समझ में ना आए और तुम्हारी ख्वाहिशात नफ्स तुम्हें समझ में आ गए तो तुम फिर वही करोगे जो फरिश्ते कहते थे, तुम फिसाद करोगे और खून बहाओगे। तो मैं अपनी तारीफ इसलिए करता हूं कि मेरी तारीफ को तुम्हारी रूह समझ सकी दलील के जरिए से, दलील के जरिए से, बगैर दलील के नहीं। उन्होंने कह लिया मैंने सुन लिया, हमारे पास साफ है उसूल दीन को इंसान दलील से कबूल करेगा, किसी को फॉलो करके कबूल नहीं कर सकता, मुझे गवाही देनी पड़ती है अल्लाह की वहदानियत की, रसूल की रिसालत की, कयामत के होने की। अकली दलील अल्लाह गाइड कर सकता है, अल्लाह का रसूल गाइड कर सकता है, आइमा गाइड कर सकते हैं, उलमा गाइड कर सकते हैं, लेकिन आखिरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी मेरी होगी, क्योंकि वही गवाही सबब बनेगी मेरी खुर्बत की। किसी ने कह दिया मैंने कबूल कर दिया, तो जब मैं नमाज को ठहरा हूं मुझे एहसास हो रहा है उन्होंने किया अल्लाह के बारे में और अल्लाह है, अब मेरी इबादत की कैफियत देख लीजिएगा, मुझे वो अल्लाह नजर ही नहीं आएगा जो मैंने जिसकी गवाही नहीं दी। कोई चीज काबिल इबादत नहीं है सिवाय अल्लाह के, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब ये होता मैं गवाही देता हूं कि कोई चीज काबिल इबादत नहीं है सिवाय अल्लाह के, और यकीनन यकीनन मैं गवाही देता हूं कि मोहम्मद उनके अल्लाह के रसूल हैं, ये शहादतें बनते हैं इंसान को मुसलमान करने के लिए। शिद्दत ईमान की जरूरत है उसके आगे की चीज को कबूल करने के लिए, जैसा ये अतीउल्लाह वाली आयत बतलाती है, ईमान वालों से ईमान का तकाजा करती है, क़यामत पर यकीन का तकाजा करती है। जिसको अल्लाह पर यकीन ना हो और क़यामत पर यकीन ना हो वो इताअत अल्लाह हकीकी नहीं करेगा, रसूल नहीं करेगा और उलिल अम्र की नहीं कर पाएगा। यहां के ऊपर हमको पता चल रहा है कि जो फजाइल जिक्र कर रहे हैं, जहां जहां पर फजीलत खुदा जिक्र की जाएगी लेकिन उसे हिदायत और इताअत से जुदा कर दिया जाएगा, वहां पर जुमूद तारी हो जाएगा, कम्युनिटी में हरकत मर जाएगी। अल्लाह की तारीफ हो रही है अलग, और उस तारीफ को जोड़ा नहीं जा रहा है मेरी रूह से, अपनी रूह से, और हिदायत और इताअत में कन्वर्ट तारीफ नहीं हो रही। तो फजीलत बराए फजीलत हो गई, खवालियां हो सकती हैं, अशआर लिखे जा सकते हैं, किताबें लिखी जा सकती हैं तौहीद के ऊपर, नबुवत के ऊपर, रिसालत के ऊपर, तारीफ पर तारीफ हो रही है लेकिन उस फजीलत को मुंतकिल नहीं किया जा रहा है, कन्वर्ट नहीं किया जा रहा है, ट्रांसफॉर्म नहीं किया जा रहा है हिदायत के लिए और इत्तेबा के लिए, इताअत के लिए। ये बड़ा सानहा है जो हम पर आ चुका है। हम अल्लाह को मानते हैं, हम उसके रसूल को मानते हैं, हम उलिल अम्र को मानते हैं, लेकिन हमने उनकी फजीलत को तरजीह दी और फजीलत को मुंतकिल नहीं किया हिदायत और इताअत की तरफ। और मुंतकिल नहीं करने का सबब क्या है, वो दूसरा वाला ईमान का तकाजा जो अल्लाह आमनू से कर रहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्र मिनकुम फइन तनाज़तुम फी शैइन फरुद्दूहु इलल्लाहि वर रसूल इन कुंतुम तूमिनूना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर। ये दूसरा वाला हमारा ईमान, ये जबानी ईमान तो आ गया, दिल में उतर नहीं पाया। दिल में उतरने का मतलब ये है कि अल्लाह का असर हमको नहीं हुआ है और दिल में हमारे अल्लाह की जात ने मकाम नहीं बनाया। बस हमारी दुनिया भी अल्लाह की दुनिया नहीं रही, हमारी अपनी दुनिया हो गई। अपनी दुनिया में हम अपनी मर्जी से काम करते हैं, अल्लाह की दुनिया में अल्लाह की मर्जी से काम करते हैं। हमको तय कर लेना है ये दुनिया हमारी है या अल्लाह की है, ये हमको तय कर लेना है कि ये दुनिया अल्लाह की है या हमारी है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन की जो आयत है वो इसी उन्वान से है, हम अल्लाह के यकीनन हैं और उसी की तरफ हमारी बाजगश्त है। और उन्हीं को अल्लाह साबिरीन कहता है, दुनिया की खिंचाव से अपने आप को सब्र के जरिए से बचाने वाले। आयत को अगर आप गौर से पढ़ें तो पता ये चला कि हमने अल्लाह को अपनी जान और रूह में जगह नहीं दी। जब अल्लाह को नहीं दी तो रसूल को कैसे देंगे? बिलाखिर अल्लाह का भेजा हुआ रसूल है। जितनी हम अल्लाह को तवज्जो देंगे उतनी तवज्जो का एक हिस्सा रसूल की तरफ जाएगा, क्योंकि अल्लाह को हम अपना खालक मानते हैं और अल्लाह ही ने रसूल को खल्क किया और अल्लाह ही ने रसूल को हिदायत दी कि उनकी हिदायत के जरिए से हमको हिदायत मिल जाए। पैगंबर को पैगंबर बनाने वाला कौन है? इमाम को इमाम बनाने वाला कौन है? जनाब इब्राहिम को पैगंबर बनाया, फिर कहा इन्नी जाएलो का लिन्ना से इमाम, कुरान की आयत, मैंने तुम्हें लोगों पर इमाम बनाया। और जब लोगों पर इमाम बना दिया तो लोगों को और वाजिब बन गया कि इताअत कर ले। रिसालत में इताअत नहीं है, रिसालत में तबलीग है, रिसालत में तबलीग है। आप रसूल की बात मानिए ना मानिए, मान लीजिए कबूल कर लिए तो उसके बाद का मरहला इताअत का आता है। आपने इनकार कर दिया रसूल का तो इताअत का मरहला आता ही नहीं है। तो रसूल का काम फकत बलाग है, पहुंचाना है, मानना या न मानना वो काम आवाम का लोगों का है। और जब मान लेंगे और काबिल बन जाएंगे तो वही रसूल इमाम बन जाएगा। हजरत अली रसूल को इमाम के नाम से याद करते हैं, जिस तरीके से कुरान ने इब्राहिम को रसूल के नाम से भी याद किया है और इमाम के नाम से भी याद किया। जैसे रिसालत एग्जीक्यूट करने लगती है, लॉज कानून बनाती है, टैक्सेशन लाती है, अदालतें बनाती है, ये पूरे का पूरा काम इमामत का है, ये पूरे का पूरा काम इमामत का है। तो अब जब आयत आके कह रही है कि अल्लाह तुम्हें लोगों से बचा लेगा, ये तबलीग करो वरना गई आगे की बात नहीं होगी। मा बल्लगता रिसालता, है रसूल अगर ये नहीं गया तो रिसालत कि काम खत्म हो गया, आपने जैसे कि रिसालत ही नहीं की। क्योंकि कंटिन्यूएशन अगर वो प्यूरिटी का ना हो, रिसालत कहते किसको है? प्यूरिटी को। खुदा किसको कहते हैं? ओरिजिनेटर ऑफ प्यूरिटी को, ओरिजिनेटर ऑफ बारियुल खलाइक अजमईन जो हम खुतबे में पढ़ते हैं, ओरिजिनेटर तमाम मखलूक का। सुबहान अल्लाह की जो हम तस्बीह पढ़ते हैं, प्योर है तू, पाक है तू, हर ऐब से मुनज्जा है तू, इमैक्यूलेट है तू, अंग्रेजी में अगर करूं तर्जमा, तुझमें ऐब आ नहीं सकता। उसकी अकली दलील वाज़े है, हमारी हाजत हमको कमजोर करती है इसलिए हम गुनाह करते हैं, हम में ऐब आता है, हमको जरूरत है चीजों की, वो चीजें हम तक नहीं पहुंचती सही तरीके से, तो हम सख्ती से लेना चाहते हैं, कमजोर पर जुल्म कर बैठते हैं। अल्लाह तो सबसे ज्यादा ताकत रखने वाला है, उसकी ताकत के मुकाबले में कोई भी नहीं है, फिर भी उसमें ऐब हो जाए तो उसका ऐब हमसे बढ़ जाएगा। हम हाजत और मजबूरी में ऐब हैं, वो कमाल में ऐब है। पॉसिबल हो सकता है? हम कमजोर रहते हुए भी अपनी कमजोरियों पर गलबा पाकर कभी जुल्म नहीं करते, और उसको कमजोरी है ही नहीं और वो माज अल्लाह जुल्म कर दे या करवा दे रसूल के जरिए से खुदा ना खास्ता या औले अमर के जरिए से खुदा ना खास्ता, तो उसकी पाकिजगी का एहसास रिसालत की पाकिजगी को साबित करता है। हम अकला की शान को नहीं समझेंगे तो रिसालत की शान को भी नहीं समझेंगे। हम जैसा कहेंगे इस उनवान से कि उनकी हतक हो जाए। कुरान कहता है, ए रसूल कह दो इनसे, अना बशरुम मिस्लुकुम, मैं तुम जैसा बशर हूं, मगर ये कि मुझ पर वही होती है, मगर ये कि मुझ पर वही होती है, इस बात की दलील है कि अगर रसूल का नफ्स अल्लाह के ताबे न हो जाए कामिल तौर पर, तो अल्लाह रसूल को वही न करता। है हम जैसे, लेकिन रूह का हाल यह है कि आखिरी नबी बनकर, अल्लाह की आखिरी हुज्जत बनकर, अल्लाह के तरफ से पैगंबर बनकर और आखिरी किताब लेकर, सिराजन मुनीरा बनकर, रहमतुल्लिल आलमीन बनकर हम पर एक हुज्जत कायम करते हैं। वही हुज्जत जो कुरान कहता है, लिल्लाही हुज्जतुल बालिगा, बलंतरीन हुज्जत अल्लाह के यहाँ है। तो ये रसूल रसूल बन जाता है कि जिसके बाद कोई और रसूल या नबी आने वाला नहीं है। सलवात भेजे पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। मुश्किल सबसे बड़ी यही थी कि रसूल के बाद के सिलसिले को लोग कबूल करने तैयार नहीं थे, खुसूसन वो लोग कि जो ताकत एंजॉय करते थे, पावर एंजॉय करते थे रसूल से पहले सोसाइटी में, कि जिनके गुलाम उनके नजदीक नहीं आ सकते, आगे जाना तो दूर की बात। अब वो सफे अव्वल में खड़े होकर नमाज पढ़ते हैं, अगर वो वक्त पे पहुंच जाए और उनका आगा बाद में आएगा तो पीछे पड़ेगा। आज भी ऐसी मुसलमानों में ग्रुप्स हैं कि जहां पर ताकतवर और पैसे वालों की जगह मस्जिद में फिक्स होती है, देर भी आए तो वो वहीं बैठेंगे। कोई कम दरामद या इज्जत में, सोशल स्टेटस में कम हो तो उसको हक नहीं है वहां पर बैठने का। कुरान ने आकर कह दिया, इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, तुम्हें अल्लाह के नजदीक सबसे ज्यादा इज्जतदार वो है जो तख्वा करता है, यानी अपने आप में अल्लाह का लिहाज करता है, परवाह करता है, अपनी हर हरकत में अल्लाह को देखता है। अल्लाह इतना बड़ा है उसके लिए कि उसकी मुखालिफत करना उसके दिमाग में नहीं आता। उसकी बुजुर्गी इतनी है कि बगैर उसकी मुखालिफत करे ऐसा लगता है कि हमने उसकी इताअत कमा हक्कहू नहीं की। मा कदरुल्लाह हक्का कदरे, कुरान की आयत है, उन्होंने अल्लाह की जैसी कदर करनी थी वैसी कदर नहीं की। नतीजा यह हुआ कि रसूल की जब अल्लाह की कदर नहीं की कि जैसे करना था, तो रसूल की भी नहीं की, और उलिल अम्र का तो मफहूमी तब्दील हो गया। तो रसूल एक जगह के ऊपर ऐलान विलायत करते हैं कि मैं तुम पर औला हूं, तुम्हारे नफूस पर, और अगर मैं औला हूं तो मैं जिसका मौला हूं, अली उसके मौला हैं। अब खुलकर बरादरान अहले सुन्नत के बड़े बड़े उलमा कह रहे हैं कि ये विलायत का जो ऐलान था ये अथॉरिटी का था, मोहब्बत का नहीं था, क्योंकि रसूल पहले अथॉरिटी की बात करते हैं और फिर हदीस बोलते हैं, कुरान की आयत कोट करते हैं जिस पर कहा जा रहा है कि रसूल अफजलियत रखते हैं मोमिनीन पर उनकी जानों से, और उसके बाद ये कहते हैं अब कबूल करते हुए ओपनली नजर आ रहे हैं, यूट्यूब भरा हुआ है कि अगर ये अथॉरिटी है तो ऐसी है, और जोड़ रहे हैं अपनी आल को किताब से, ये किताब अल्लाही व इतरती अहल बैती, और अगर तुम इनको थाम लो तो कभी भी गुमराह नहीं होंगे मेरे बात से। उस रसूल को, जबकि रसूल कोई और आगे आने वाला नहीं है, कोई نبی آنے والا نہیں ہے، اپنے بات کی پرواہ نہیں ہے جو اتنی مشقت کے ساتھ دین کو یہاں تک پہنچایا ہے. ما اوزیا نبی ان کا ما اوزیت، رسول کی حدیث ہے، کسی نبی کو جتنا مجھے اذیت ہوئی ہے یا کی گئی ہے کسی نبی کو نہیں کی گئی، کسی نبی کو نہیں کی گئی. یہ رسول تھے، ماتھے پر شکن نہیں آئی. 23 سال کی زندگی میں رسول کو 13 سال جو تکلیف ہوئی اور پھر 10 سال جو مدینے کے تھے، پیشانی پر شکن نہیں آتی ہے. جیسے جیسے مصیبتیں بڑھتے جاتی ہیں ویسے ویسے رسول کی عبادت، تو ہی میرے لیے سب کچھ ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ، کاملاً تیری طاقت کے علاوہ کوئی طاقت ہی نہیں ہے نہ کوئی قدرت ہے، تو ہی میری پناہ گاہ ہے. قرآن آیتوں پہ آیتیں بھیج رہا ہے، آیتوں پہ آیتیں بھیج رہا ہے، اے رسول فاصبر ان وعد اللہ حق ولا یستخفنک الذین لا یوقنون. اے رسول صبر کرو، بے شک اللہ کا وعدہ حق ہے. کئی ایسے مرحلے آتے تھے جہاں کے اوپر ایسا لگتا کیا تھا کہ جو رسول نے وعدہ کیا تھا وہ پورا ہونے والا نہیں ہے. جو شک کرنے والے مومنین ہوتے تھے وہ پلٹ جاتے تھے، لوگوں کو بھیکاتے تھے اور کہتے تھے کہ اب یہ کیا ہو گیا، انہوں نے ایک بات کی اور اب یہ نتیجہ ہو گیا کہ لگ رہا ہے کہ ہم مارے جائیں گے سب. جنگ خندق میں، جنگ احزاب میں یہی ہو گیا، گھراؤ ہو چکا تھا، امید قطع ہو چکی تھی، اب سوال یہ تھا کہ بچیں گے یا نہیں بچیں گے، لوگوں کو شک ہونے لگا. رسول کا یقین بڑھتا گیا. جب عمر ابن عبدوت آ گیا چھلانگ مار کر اور کہنے لگا کہ تم لوگ تو یہ کہتے ہو کہ اگر مار بھی ڈالے جاؤ گے تو جنت مل جائے گی، تو اب تو میں آ گیا ہوں، مجھے مار ڈالو اور جنت میں چلے جاؤ، یا میں تمہیں مار ڈالتا ہوں تو تم جنت میں جاؤ گے، جنت کا طلبگار تم میں سے ہے تو آ جائے. حالت یہ ہو گئی تھی کہ کوئی اٹھ نہیں رہا تھا. رسول نے کہا کہ کوئی ہے جو اس کتے کے کلام کو قطع کرے، ہے کوئی کہ جو اس کتے کے کلام کو قطع کرے، یعنی اس کے چیلنج کو قبول کرے. کوئی اٹھ نہیں پا رہا تھا، اس کا دبدبا اتنا تھا کہ بتلایا کہ ایک مرتبہ ہم اس کے ساتھ تھے تو ڈکائٹوں نے حملہ کر دیا تھا، لٹیروں نے، تو اس کی ڈھال دور تھی تو اس نے اونٹ کے بچے کو اٹھا کر ڈھال بنا کر ان کو بھگایا تھا. اس کی طاقت کا اندازہ بتلایا جا رہا تھا. علی کو اٹھتے ہیں، رسول بٹھاتے ہیں، علی اٹھتے ہیں، رسول بٹھاتے ہیں، علی اٹھتے ہیں، رسول تیسرے وقت کہتے ہیں کہ اب جا رہا ہے کل ایمان کل کفر کے خلاف. یہ کل کے اوپر توجہ کریں، کل ایمان، کامل ایمان، پکا ایمان، لن یفترقا حتی یرد علی الحوض، جب تک کہ حوض کوثر تک نہ آئیں گے یہ جدا نہ ہو پائیں گے. جو ہوا سو ہوا، سب جانتے ہیں، سب جانتے ہیں. تعجب ہوتا ہے اس بات پر کہ اس کے رسول کے بعد ہم کو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ حقیقتاً کس کے یہاں اولی الامر کا لقب بنے گا، کون ہے جو رسول کے ایک ہی ساتھ میں اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم کا مصداق بنے گا. آیتوں پہ آیت آ رہی ہیں، معنی پلٹا دیا جا رہا ہے، گفتگو مختلف کر دی جا رہی ہے. نہیں یہ نہیں، وہ مراد ہے، وہ نہیں یہ مراد ہے. پوری کی پوری علمی فکری تحقیق کو ختم کر دیا گیا. کیوں؟ کہ اگر علی کو مان لیں تو رسول کی بات آگے وہی پیوریٹی کے ساتھ بڑھے گی جس طریقے سے رسول نے فرمایا تھا متواتر روایتوں میں، جو برادران اہل سنت کے یہاں متواتر ہے. अब समझ आ रहा है कि प्योरिटी को अगर हम अपनी जान में जगह नहीं देंगे तो ना अल्लाह की प्योरिटी समझ में आएगी। हमारी रूह लतीफ है, लतीफ है, इतनी लतीफ है कि हदीस में मिलता है, हदीस में मिलता है कि फूल की पत्ती से ज्यादा लतीफ है। फूल की पत्ती को हाथ लगाइए और छोड़ दीजिए, उस पर निशान आ जाएगा, दबाइए भी मत, यूं हाथ लगाइए और छोड़ दीजिए, हल्के से, बिल्कुल जितना आपसे हल्के से हो सकता हो हाथ लगाइए और छोड़ दीजिए, उस पर निशान आ जाएगा। ये रूह उससे ज्यादा लतीफ है, कंपैरिजन नहीं है। अब वो रूह की कैफियत को समझने वाले को मोमिन कहते हैं, क्योंकि जैसे रूह की कैफियत समझ में आने लगी, रूह अल्लाह से चिपक जाती है। क्यों है, क्यों चिपक जाती है? क्योंकि उसकी रूह है। वह नफख तो फी है में रूही, जैसा ही अपना कामिल एहसास होता है रूह अल्लाह से चिपक जाती है। जब अल्लाह से चिपक जाती है तो पूरी कायनात उसके लिए अल्लाह की बनाई हुई नजर आती है, और उसमें अपने रोल को वो अल्लाह की नजर से देख लेता है। यानी एक पॉइंट पर वक्त के, आज हम यहां बैठे हुए, हम आप यहां बैठे हुए, एक पॉइंट पे वक्त के उस रूह को एहसास खिलकत कायनात से लेके कयामत तक हो जाता है, अगर पाक हो जाती है, अगर पाक हो जाती है। अल्लाह कह रहा है ना, यालमु मा बैना अईदीहिम व मा खल्फहुम, अल्लाह जानता है जो आगे आने वाला है और वो जो पीछे गुजर चुका है। जब अल्लाह की शान, यह आयतुल कुर्सी की का एक हिस्सा है, यालमु मा बैना अईदीहिम व मा खल्फहुम, जो आगे आने वाला है और जो पीछे गुजर चुका है। पीछे गुजरने का तो कुछ इल्म आपको हमको भी हो जा सकता है, आगे आने वाले का इल्म अल्लाह कहता है सब पता है मुझे, सब पता है मुझे, और गायब का इल्म मैं जो रसूल तुम्हें चाहता हूं वो दे देता हूं, जो गायब का इल्म जो मैं चाहता हूं वो दे देता हूं। जिस तरीके से रसूल ने करबला की भी पेशन गोई की थी, अली की शहादत की भी पेशन गोई की थी, मिल जाता है अहले सुन्नत की किताबों में कि अली एक दिन आएगा जब तुम्हारी दाढ़ी तुम्हारे खून से खिजाब हो जाएगी, खिजाब कर दी जाएगी। सवाल अली के दिमाग में आ रहा है, क्या मैं उस वक्त हक पर रहूंगा, क्या मैं उस वक्त हक पर रहूंगा? क्यों? कि अली जानते हैं उलिल अमर हूं, और उलिल अमर अगर हक पर नहीं रहा तो उसकी हयात माना नहीं देती। अली अपने वजूद को जस्टिफाई कर रहे हैं, हक पे रहना कामिल रूह का वजूदी सवाल है, एग्जिस्टेंशियल क्वेश्चन है। रूह की पाकीजगी रूह का एग्जिस्टेंशियल क्वेश्चन है। नापाक हो जाती है तो मादे का असर उस पर छूटता है, मादा पस्तरीन चीज है और सबसे दूर तरीन चीज है वास्तों के जरिए से अल्लाह से। दुनिया बनी है डीजेनरेटेड एटम्स के नतीजे में, मैटर अपने एक के बाद एक कॉस को लेते 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 जब इंतहा को पहुंच गया तो ये दुनिया वजूद में आई। और दुनिया को दुनिया इसलिए भी कहा जाता है, इसका माना होता है अदना का मुअन्नस, सबसे पस्त, अरबी जबान में हम अदना लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, उसका ही फेमिनाइन जेंडर है दुनिया। कॉज एंड इफेक्ट की दुनिया में अगर आप देख लें तो कॉजेशन में अगर आप लेकर चलें तो मैटर अपनी ओरिजिनलिटी से डीजेनरेट, एनर्जी मैटर में कन्वर्ट हुई, मैटर डीजेनरेट होते 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 एलिमेंट्स अलग अलग बनने लगे, जब वो इंतहा को पहुंचकर अपनी सड़न में आखिरी तक पहुंच गए तो ये दुनिया वजूद में आई। तो वास्तों के हिसाब से ये दुनिया, कॉज एंड इफेक्ट की उन्वान से ये दुनिया अल्लाह से सबसे दूर है, और रूह अल्लाह की रूह है, सबसे करीब है, तवज्जो का मोहताज, अल्लाह की तरफ से दी गई हुई रूह सबसे करीब है, ये मैटर सबसे नीचा है। اب جب سب سے اعلیٰ سب سے نیچے کا اثر قبول کرنے لگے تو گراوٹ کس کو ہوگی؟ ثم رددناہ اسفل سافلین کی آیت آ جاتی ہے, اور پھر ہم نے اس انسان کو پست سے پسترین درجے تک گرا دیا. بات غلط ہے یا صحیح؟ میں نے شروع کی مجلس میں کہا تھا, ایک سوال بھی اس پر آیا ہے انٹرنیٹ پر, اس کا جواب دیتا ہوا چلوں, کہ قرآن میں اللہ نے خلق الانسان و ضعیفہ بھی کہا ہے, اور دوسری طرف انسان کی اتنی اعلیٰ تعریف کی ہے کہ کہا ہے کہ اس کو بنانے کے بعد تبارک اللہ احسن الخالقین. اس کا جواب یہ ہے اس سوال کا جو کیا گیا انٹرنیٹ کے اوپر, کہ یہاں پر انسان کے پوٹینشیل اور پیورٹی جو روح میں ہے اس کے بارے میں کہہ کر اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے اس روح کو جو بدن میں ڈالا ہے اس میں اس کو پسترین کو بہترین بنانے کے لیے ڈالا ہے. ہم نے دنیا کو یوں کر دیا نا, بدل دیا نا, پسترین چیزوں کو لے کے بہترین چیزیں بنا دی نا. کوئی اور جانور تو یہ نہیں کر سکتا, یہ پاسبل ہی نہیں ہے. ہم نے دنیا کو سمجھا, اللہ نے صلاحیت دی اور اس کو یہاں تک لا دیا. تو انسان کی قابلیت مادے میں کام کرنے کی اللہ نے عطا کی, اور وہ کام کرنے کی طاقت جو اس کے پاس آئی وہ اللہ کی دی ہوئی روح سے آئی. اب جب اللہ سے غافل ہوتا ہے تب پست ہوتا ہے. اللہ اگر خلق الانسان و ضعیفہ نہ کرتا تو فرشتہ بن جاتا. پوٹینشیل انفینٹ ہے لیکن پرون ٹو ایرر ہے. پوٹینشیل انفینٹ ہے جس پر اللہ اپنی تعریف کرتا ہے تبارک اللہ احسن الخالقین. اللہ کوئی کم چیز کے اوپر اپنے آپ کو احسن الخالقین نہیں کہہ سکتا, تو وہ کمال انفینٹ ہے, غیر محدود غیر متناہی ہے, لیکن پرون ٹو ایرر ہے. جس طریقے سے کچھ دوائیں ہوتی ہیں, آج کل کے جو ویکسینیشنز نکلے ہیں کہ بھائی 70 degrees پر رکھنا پڑتا ہے, کچھ کو 12-15 degrees پر, 60 degrees پر رکھنا پڑتا ہے, اثر ہے لیکن شرائط ہے, اثر ہے لیکن شرائط ہیں. اثر انسان کی روح کا ہے, شرائط یہ ہے کہ مادے کے سامنے سر نہ جھکا دے, سوائے اللہ کے کسی اور کو اپنا معبود نہ سمجھے, نہ ہی اپنی ہوائے نفس جو بدن کے طرف سے وجود میں آتی ہے, جو بدن کے ذریعے سے وجود میں آتی ہے. جوانوں کے لیے کہہ رہا ہوں, انسان کو شہوت ہے, انسان کو شہوت ہے, خواہشات نفسانی ہیں, لیکن اللہ کی رحمت کے نیچے لا لیجئے رسول رحمت کے ذریعے سے اور اس کے اہل بیت کے ذریعے سے, تو رحمت کے نیچے شہوت جائز, رحمت کے بغیر شہوت ظلم, خود پر بھی اور سوسائٹی پر بھی. عجیب چیز ہے. اس لیے کہتا ہے زوجہ اور بیوی اور شوہر کے درمیان, میں نے ان کے درمیان مودت و رحمت رکھا. مالک اس میں شہوت بھی ہے, کہتا ہے شہوت ہے لیکن رحمت کے نیچے ہے. توجہ کا محتاج ہوں, شہوت ہے لیکن رحمت کے نیچے ہے. جب رحمت کے نیچے شہوت آتی ہے تو گھر بن جاتا ہے, فیملی وجود میں آتی ہے. وہ یطہرکم تطہیرا بھی اسی سے نکل آتا ہے. صلوات بھیجے پر محمد والے محمد. سمجھنے کی ضرورت ہے, مالک یہ کیوں کر دیا, وہ کیوں نہیں کیا, اس کو پتا ہے کہ کیا کیا اور کیا نہیں کیا. وہ فوق کل ذی علم علیم, قرآن کی آیت. اللہ تو ہر جاننے والے پر جاننے والا ہے, ہر جاننے والے کو علم دینے والا ہے. ہر خیر اس سے نکلتا ہے یاد رکھ لیجئے, اور ہر شر اس کو پیٹ کرنے سے نکلتا ہے, یہ یاد رکھ لیجئے. جوانوں سے کہہ رہا ہوں, بزرگ میرے سے بہتر جانتے ہیں, بزرگ میرے سے بہتر جانتے ہیں, اس سے ہر خیر نکلتا ہے. اور جتنا مانگو اتنا دے گا, جتنا مانگو اتنا دے گا. ہم نے ہر وہ چیز جو تم نے ہم سے مانگی ہم نے عطا کیا, قرآن کی آیت. ہم نے ہر وہ چیز جو تم نے ہم سے مانگی عطا کیا. مالک میں نے اتنی مادی دعائیں کی, میں نے کب کہا کہ مادے کی تم پوجا کرو گے اور مجھ کو کہو گے دو تو میں دے دوں گا؟ یہ کہا تم روح کی دعا کرو نا, جو جو تمہارے روح سے متعلق دعا ہے وہ میں پوری کرنے کو تیار ہوں، حتیٰ وہ دعا کہ جو تمہارے مادے کو بھی متاثر کرے گی، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اور جس نے اللہ کا تقوی اختیار کر لیا، اللہ نے اس کے لیے راستہ نکال دیا اور اس کو ایسی جگہ سے رزق دیا کہ اس نے گمان بھی نہیں کیا تھا۔ آج ہم آپ جو روٹی کما رہے ہیں کس کا کتنا گمان تھا؟ اللہ کہتا ہے تقوی اختیار کرو، میں دیتا ہوں ایسی جگہ سے کہ تم نے گمان نہیں کیا ہو۔ روپ سے مادے کا اثر ہو جائے گا، مادہ لے کر روپ پر اثر چھوڑنے جاؤ گے تو یہ الٹی گنگا اللہ کے یہاں نہیں بہتی۔ ہم کیا کر رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں، ہم کو سمجھنا چاہیے، دیکھنا چاہیے، غور کرنا چاہیے۔ اوپر نیچے کر رہے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اہل بیت اور رسول اور قرآن اور اللہ کی اطاعت میں رہیں۔ توجہ پستی پر ہے، جیسے کہ پستی کے بغیر زندگی نہیں گزر پاتی۔ پستی کے اندر رہنا تو زندگی کی موت ہے، الہی زندگی اگر نہ ہو تو قرآن اس کیفیت کو موت سے تعبیر کرتا ہے، موت بدن یقینی ہے۔ قرآن رسول کو کہہ رہا ہے انکا لمیت و انہم لمیتون، اے رسول تم بھی یہ بدنی زندگی سے ہاتھ دھونے والے ہو اور یقیناً یقیناً یہ لوگ بھی بدنی زندگی سے ہاتھ دھونے والے ہیں، یہ لوگ بھی ہاتھ دھونے والے ہیں۔ تو ہم آپ سب اس دنیا کو چھوڑنے والے ہیں، بلند ترین روح کے ساتھ چھوڑیں یا پست ترین یا بیچ بیچ والی، سمجھنے والا رکے گا نہیں، کیونکہ اللہ کا ثواب آخرت میں خیروں و ابقا کے عنوان سے ہوگا اور دنیا کو بھی تنگ نہیں کرے گا۔ اور اگر اللہ پر یقین نہیں رہا تو ہو سکتا ہے کہ دنیا کا بھی خسارہ ہو جائے، آخرت بھی ہاتھ سے جائے، خسارت دنیا ول آخرہ ہو جائے۔ انسان عجیب مخمصے میں پھنسا ہوا ہے۔ تو یہ رسول نے پیام دے دیا کہ اگر نہ دیتے ہوتے تو رسالت کو جیسے کہ انجام ہی نہ دیا ہو۔ وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَةً، اگر آپ نے اے رسول یہ کام انجام نہیں دیا جو آپ کو وحی ہوئی ہے تو یہ ایسے ہے جیسے کہ آپ نے رسالت کا کام انجام نہیں دیا، یعنی کنٹینیوٹی اگر رسالت کے میسج کی ختم ہو جائے تو رسالت ختم ہو گئی۔ بات واضح، ہزاروں آپ ترکیبیں لائیے، ترکیب فٹ نہیں ہوگی۔ سرکل کو اسکوائر میں فٹ کرنے کی کوشش یا اسکوائر کو سرکل میں فٹ کرنے کی کوشش، ہو سکتا ہے، بہت ہوتا ہے تفسیروں میں، سنتوں کے تفسیروں میں خوب ہوتا ہے، اسکوائر کو کوشش کرتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ نہیں یہ اسکوائر نہیں ہے، یہ بھی چوک سرکل ہے، اوپر نیچے، مگر دیکھنے والا دیکھ سکتا ہے۔ بات کو آگے لے کے آپ سمجھا نہیں سکتے، سوشیولوجیکلی پورے قبائل آمادہ تھے، حتیٰ آپ دیکھ لیجئے جنگ قادسیہ ہو رہی ہے دور حضرت عمر میں، جنگ قادسیہ ہو رہی ہے ایران کے بارڈر پہ اور وہاں پر فورسز کا شارٹیج ہو رہا ہے اور تقاضا ہوتا جا رہا ہے بارڈر سے کہ فورسز روانہ کیجئے، آخری میں بہت کم فورسز رہ جاتے ہیں۔ حضرت عمر مولا متقیان کو بلا کر کہتے ہیں کہ کیا کروں، مولا کہتے ہیں کہ اگر آپ اس وقت چلے جاتے ہیں یہ تھوڑی سی فورسز کو لے کر، اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہاں پر تو ان کو حوصلہ بڑھ جائے گا کہ اب خلیفہ آ گیا ہے اور اب ان کے پاس کچھ باقی نہیں رہا، اس کا یہ نتیجہ ہوگا کہ وہ لوگ کے حوصلے جب بلند ہو جائیں گے وہ لوگ اور فورسز لا کے ہمارے فورسز کو پریشرائز کریں گے، آپ کا جانا وہاں پر رولز آف کمبیٹ کے خلاف ہے، دوسرے اس سے بڑی پریشانی لاحق ہوگی۔ وہ کیا ہوگا کہ جو اطراف کے قبائل ہیں، یہ رسول کی رحلت کے تقریباً 10 سال کا واقعہ ہے، تقریباً 10 سال کے بعد کا واقعہ ہے، یہ جو اطراف کی جو فورسز ہیں قبائل، یہ موقع تان کے بیٹھی ہوئی ہیں کہ اب بھی اگر ان کو موقع مل جائے تو مدینے پر حملہ کر کے مدینے میں سے اسلام کی بنیادوں کو ختم کر دیں، آپ چلے جائیں گے تو یہ بھی ختم ہو جائے گا، جو یہاں پر ہے وہاں کا حاصل نہیں ہوگا، یہاں کا ہاتھ سے चला जाएगा, इसलिए तो उन्होंने कहा था लौला अली लहला का उमर। एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी उलिल अम्र की यह होती है, अपने लिए ना जिए, अल्लाह के लिए जिए, क्योंकि अल्लाह की इताअत उस पर हमसे ज्यादा लाजिम है। जिस तरीके से रसूल पर नमाज शब वाजिब थी, हम पर नहीं है, क्योंकि अल्लाह का बड़ा काम करना था। उसी तरीके से उलिल अम्र को भी कोशिश ज्यादा करनी पड़ती है। सबसे बड़ा जिम्मा यह है कि उम्मत टूटने ना पाए। लीडरशिप किसी की भी रहने दें, उम्मत टूटने ना पाए। और ये उम्मत के न टूटने के लिए क्या क्या नहीं किया अली और औलादे अली ने, हम देखते हैं। चौथे इमाम की दुआ है बनी उमैया के सिपाहियों के लिए कि जो इस्लामी सरहदों को गार्ड कर रहे हैं, सहीफ़े सज्जादिया में मिल जाएगा। दुआ उन फोर्सेस के लिए कि जो इस्लामी सरहदें गार्ड कर रहे हैं। हुकूमत थी वो कि जो हुसैन को कत्ल कर चुकी थी, इमाम को असीर कर चुकी थी, बीबियों को असीर कर चुकी थी, लेकिन लार्जर पर्पस क्या था? इस्लाम की बका। नाम नेहाद मसीहों का अगर कब्जा हो जाता तो कुरान बाकी नहीं रहती। तो सिखले अकबर कुरान है, सिखले असगर अहले बैत है। कुरान पर जब जब आंच आएगी ये फिदा होते जाएंगे ताकि कुरान की अजमत बाकी रह जाए। हम पर क्या गुजरती है उसकी परवाह ही नहीं है। हम पर क्या गुजरती है उसकी परवाह ही नहीं है। हिर्ज जवाद हमारे यहां है ना, हिर्ज कहते हैं तावीज को, हिर्ज का मतलब हिफ्ज, हिफ्ज माना वही है, हिर्ज का मतलब हिफ्ज। हिर्ज जवाद है हमारे पास, ये वो तावीज है जो नवे इमाम मामून को देते हैं जब वो सलीबी जंग में क्रिश्चियंस को नाम नेहाद मसीहों को कन्फ्रंट करने के लिए जाता है। अगर वो हार जाता, इस्लाम कमजोर पड़ जाता, बाप के खातिल की हिफाजत कर ली, इस्लाम की बुलंदी और किताब की बुलंदी के लिए ये अजमत है। मामून आठवें इमाम का कातिल अहले सुन्नत की किताबों में मौजूद है, आठवें इमाम का कातिल। अबुल कलाम आजाद अपनी एक किताब में लिखते हैं कि यह कातिल इमाम रजा अलैहिस्सलाम था। जब उनको क्रिटिसाइज किया जा सकता है, आप कैसा कहते हैं कि आले रसूल को जो है खलीफा मार डालते हैं, तो आप कहते हैं उनके पास दलील तो देखो, वो कहते हैं कि ज्यादा अंगूर खाने से वो इंतकाल कर गए। ये तो हुकूमतें इस किस्म की मिसालें देती हैं जब कत्ल कर देती हैं किसी बड़े आदमी को। जब किसी बड़े आदमी को कत्ल कर दिया जाता है, रसूल के बाद कुछ लोग ऐसे थे कि जिन्होंने बैत नहीं की थी, जिसमें साद इब्ने उबादा जो अंसार के सबसे बड़े लीडर थे, उन्होंने बैत नहीं की थी, वो मर गए, उनको तीरों से मार डाला गया और कहा ये गया कि ये मर गए अजिन्ना की तीर अंदाजी में, जिन्होंने उनको मार डाला। खतिलुल अजिन्ना कहा जाता था जिन्हों के मारे डाले हुए। भाई क्यों मार डाला जिन्होंने? कहा कि वो खड़े रहकर पेशाब कर रहे थे, जिन्हों को पसंद नहीं आया, उन्होंने तीर लगा दी और वो मर गए। कितने लोग होंगे जो खड़े रहकर पेशाब करते होंगे जिसको तीर नहीं लगता, साद इब्ने उबादा को तीर लग गया। आप देखते जाइए और देखते जाइए और देखते जाइए। अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्र मिनकुम के सीधे साधे माना न करने का नतीजा हम अपने आप को गंदा करते हैं ताकि हिदायत हमको न मिल सके। प्योर हार्ट के जरिए से अल्लाह किसी को कबूल नहीं करेगा, मगर वो के जो प्योर हार्ट से उसके पास आएगा। कुरान की आयत है इल्ला मन जा बिकल्बिन सलीम, कल्बे सलीम के साथ अल्लाह के पास जाना है तब कबूल किया जाएगा। प्योरिटी की जरी भी कमी किसी वास्ते से हो रही हो, हमारा दीन खत्म हो जाएगा। इसका लिहाज रख लें, क्योंकि रूह इंप्योरिटी के साथ सर्वाइव नहीं हो सकती, नहीं हो सकती सर्वाइव। फ्लाइंग बर्ड्स को अगर आप गौर करें, थोड़ा सा धक्का उनको लग जाता है तो वो लोग अपनी सेंटर ऑफ ग्रेविटी खो देते हैं, गिर जाते हैं। थोड़ा सा धक्का, उतना धक्का जरूरी नहीं है अगर आप मोटरसाइकिल पर भी जा रहे हो, मोटर पर जा रहे हैं तो और भी नहीं, जरा सा धक्का लग जाए, जरा सा, और उसका बैलेंस जाएगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी लूज करेगी और उसके बाद फिर कंट्रोल नहीं करेगी, गिर जाएगी, पलट अपने आप को संभाल नहीं पाएगी। यह हवा में उड़ने वाली चिड़िया की कैफियत है, यह हवा से आला दुनिया में जीने वाली रूह की क्या कैफियत होगी, समझे ना, समझे ना, फिक्र करें ना और करें ना। कुरान 740 मरतबा से ज्यादा कहता है सोचो फिक्र करो गौर करो, सोचो फिक्र करो गौर करो, क्यों कहता है इतनी मरतबा, क्यों बार बार कहता है? इसलिए कहता है कि हमको आदत दिलाए जो बात समझा रहा हूं समझ लो, वरना बताइए इतना बोलने की जरूरत है क्या? कौन सी किताब आप पढ़ते हैं जिसमें जो भी किताब आप सब्जेक्ट की पढ़ रहे हो, कितना भी मुश्किल सब्जेक्ट हो, हायर मैथ्स हो, फिजिक्स हो, एस्ट्रोनॉमी हो, रॉकेट साइंस हो, एक किताब ले लीजिए कुरान की साइज की, दो तरफ अगर छोटे प्रिंट में लिखा गया तो 100 सफे नहीं होते, ठीक है, आप ले लीजिए। और उसमें अगर 740 मरतबा से ज्यादा और करो फिक्र करो सोचो और करो फिक्र करो सोचो लिखा जाएगा, तो आप उसके लिखने वाले को आकल भी समझेंगे? अरे भाई शौक है बोल के आया हूं, एक जगह दो जगह पर लिख दो कि यहां पर तवज्जो ज्यादा करो वहां पर तवज्जो ज्यादा करो, कबूल है कि बात बारीक है, जरा गौर करने पर समझ में आ जाएगी। ये 740 मरतबा से ज्यादा तो फिक्र करो गौर करो क्या है? इसलिए कि इंसान की वो दर्जा कैफियत हासिल ही हो सकती है 740 मरतबा से ज्यादा फिक्र करने पर। हम सुनते सुनते इनकी बात उनकी बात लेकर चले जाते हैं कि हम दीन को हासिल कर लिए, अमल की दुनिया आती है, बुरे डटे हुए होते हैं, हक वाले हक की तारीफ करते हुए नजर आते हैं, सलवात भेजे पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। अखवाले हक की तारीफ करते हैं, बुरे बुराई पर अमल करते हैं, अखवाले हक की तारीफ करते हैं, बुरे बुराई पर अमल करते हैं, तो अमली दुनिया में पता चलता है कि बुरों का गलबा हो जाता है। तालिबान ने वैसे कब्जा कर लिया है काबुल पर, घेर लिया है काबुल को, आज की न्यूज, आगे आगे देखिए होता है क्या। ताकत का इस्तेमाल तो हो रहा है, आया उस बारीकी के साथ हो रहा है जिस तरीके से रसूल चाहते हैं, या कत्लो गारतगरी की तरफ हरकत हो रही है? कुरान कहता है कत्लो गारतगरी में ज्यादती ना करना, ला तुसरिफु फिल कत्ल, मार काट में ज्यादती ना करना, ये अल्लाह का दीन है, अल्लाह का नाम लेके काट मार नहीं के चलती है। आगे देखते हैं कि क्या हाल, दुआ ये करते हैं कि खुदा सबकी आबरू की हिफाजत करे, सबके माल की हिफाजत करे, जो जो वहां पर हैं उनकी इज्जत आबरू बच जाए और ये जुल्म ना करें, और रसूल रहमत के नुमाइंदे बन के जो करते हैं करें, उसके बाद रसूल रहमत के नुमाइंदे बन के जो करते हैं बस दुआ है। ये हकीकत में क्या होगा वो अल्लाह ही बेहतर जानता है। ये हमें इसलिए कह रहा हूं कि आज की दुनिया में भी अच्छे जब अच्छाई पर डट नहीं जाते, बुरे खुद ब खुद गालिब हो जाते हैं। यह कैफियत आपको करबला में बिल्कुल वाजे मिलती है कि वही शहर के करीब शहीद हुए जहां से 18,000 खुतूत आए थे इमाम हुसैन को। ताज्जुब होता है, एक महीना नहीं गुजरा खुतूत आए और हालत यह हो गई, हालत यह हो गई कि लोग पलट गए और मुस्लिम कत्ल कर दिए गए। हाथ लिखने के 27 दिन बतलाते हैं बाद आपका वहां से रहा हुआ पकड़े गए और मारे गए, और हुसैन के साथ इतने कम रह गए कि शबे आशूर 72 की तादाद अल्लाह की याद और अल्लाह की नमाज के लिए एक रात की मोहलत मांगी जा रही है, और रात में एक मरतबा हुसैन खेमों के पीछे जाते हैं अकेले, نافع ابن ہلال صحابی امام حسین دیکھتے ہیں کہ امام اکیلے تنہا جا رہے ہیں, خوف کرتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ امام پر کوئی حملہ کر دے یا تیر سے امام کو ہدف بنا لے, نشانہ بنا لے. ساتھ آ جائے, کہتے ہیں کہ یا امام آپ یہاں پر آ گئے. تو امام نے کہا میں آ کر معائنہ کر رہا ہوں کہ کہیں کوئی نشیب و فراز تو ایسا نہیں ہے کہ جہاں پر وہ کل حملہ کر سکتے ہیں اس نشیب و فراز کا سہارا لے کر, اس لیے میں آ کر یہاں پر یہ جگہ کو دیکھ رہا ہوں. ایک جگہ پر ملتا ہے کہ شمر نے اس راستے سے حملہ کرنے کی روز عاشور کوشش کی اور امام کے اصحاب نے اس کے حملے کو رد کیا. ہم کو تاریخ میں کچھ جگہوں پر یہ بھی ملتا ہے جس میں شمر زخمی بھی ہوا, یہ بھی ملتا ہے. تو امام جا کر معائنہ کرتے ہیں, نافع ابن ہلال بھی پہنچ جاتے ہیں, کہتے ہیں یا امام آپ کو احتیاط کرنا چاہیے تھا, وہ غلطی سے ایسا نہ ہو جائے کہ کچھ سانحہ ہو جائے. امام کہتے ہیں وہ تو چھوڑ دو, یہ دو جو پہاڑ تم کو دکھ رہے ہیں نا نافع, یہ اچھا راستہ ہے, اگر تم چاہو تو یہاں سے نکل جاؤ اور اپنی جان بچا لو. حسین کی جان کی نافع کو لگی ہے اور نافع کی جان کی حسین کو لگی ہے. حسین نہیں چاہتے کہ کوئی پورے شعور کے بغیر مجھ پر قربان ہو جائے. نافع رونے لگتے, کہتے یا امام میں نے 1000 درہم میں میں نے یہ تلوار خریدی اور 1000 درہم میں میں نے اپنا گھوڑا خریدا, یعنی پوری میں نے پونجی اپنی لگا دی آپ کی نصرت کے لیے. آپ کہتے ہیں کہ میں چلا جاؤں جان بچا لوں, پلٹ آتے ہیں خیمہ گاہ میں جا کر جناب زینب سے ملاقات کرتے ہیں. بی بی پوچھتی ہے, بی بی پوچھتی ہے ماں جائے کیا آپ نے اپنے اصحاب کو پوروں کو آزما لیا ہے, یا آپ نے اپنے اصحاب کو پوروں کو آزما لیا ہے. امام جواب میں کہتے ہیں ہاں بہن, ان میں سے ہر ایک مجھ پر جان قربان کرنے کی جو آرزو رکھتا ہے, وہ محبت رکھتا ہے کہ جو ایک نوزاد دودھ پیتے بچے کو اپنی ماں کی چھاتی سے ہوتی ہے, اس سے زیادہ ان کی محبت مجھ پر جان دینے کی ہے. سلام ہو ان اصحاب پر, کم تھے لیکن ویسے تھے جو روح کو سمجھ چکے تھے. جب روح سمجھ میں آ گئی تو اولی الامر بھی سمجھ میں آ گیا, ہے نا. من عرف نفسہ فقد عرف ربہ, جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا. صبح عاشور ہوتی ہے, اصحاب ایک کے بعد شہید ہوتے جاتے ہیں, تمام اصحاب شہید ہو جاتے ہیں, اب ہاشمین فقط باقی رہ جاتے ہیں. ایک دوسرے سے گلے ملنے کا سلسلہ شروع ہوتا ہے اور امام حسین سب سے پہلے نظر دوڑاتے ہوئے اکبر کو دیکھتے ہیں. اکبر آمادہ ہیں, کہتے بیٹا جانا, بیٹا نکلنے کو آمادہ ہو رہا ہے. امام کہتے ہیں اللہ کی طرف دیکھ کر مالک ایسے کو بھیج رہا ہوں جو خلقن خلقن و منطقن تیرے نبی سے سب سے زیادہ مشابہ ہے. خلقت میں رفتار, گفتار, کردار سب میں زیادہ تیرے نبی سے مشابہت رکھتا ہے. جب مجھے میرے بچپن کی یاد آتی تھی اور رسول کا چہرہ ذہن میں آتا تھا تو میں اس جوان کی طرف, میرے بیٹے کی طرف نظر کر لیا کرتا تھا. اکبر جاتے ہیں, اس سے پہلے کا ایک واقعہ اور نقل کرتا ہوا چلوں. راستے میں ابھی کربلا نہیں پہنچے ہیں, امام حسین گھوڑے پر سوار ہے, سو جاتے ہیں. کچھ دیر تک آنکھ لگ جاتی ہے امام کی. آنکھ جب کھلتی ہے تو آئے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے ہوئے آنکھ کھولتے ہیں. اکبر بغل میں होते हैं पूछते हैं, या इमाम है बाबा आप ये आयत क्यों पढ़ रहे हैं, ये कलमा इस्तरजा क्यों पढ़ रहे हैं? इमाम कहते हैं मुझे नींद में आवाज आई, किसी मुनादी ने सदा दी कि ये काफिला हरकत कर रहा है और मौत इसके साथ हरकत कर रही है। एक ही सवाल अकबर का होता है, कहते हैं कि बाबा क्या हम हक पर नहीं है, क्या हम हक पर नहीं है? इमाम खुश हो जाते हैं, ये रूह की जो बातें होती थी इमाम को खुश कर देती थी। कल मैंने हुर का तस्करा किया, जोहर खैन का तस्करा किया, इमाम खुश हो जाते थे। बेटा कह रहा है कि बाबा हम हक पर नहीं है, वलसना अल हक, क्या हम हक पर नहीं है? इमाम कहते हैं जजाकल्लाहु खैरल जजा, बेटे अल्लाह तुझे बेहतरीन जजा दे, तूने बात वही कही जो मैं चाहता था कि तू कह दे, आज वही बच्चा हक पर जा रहा है जान देने के लिए। अकबर निकलते हैं, हमलावर होते हैं, लोग जानते हैं अकबर की अहमियत कितनी है हुसैन और हुसैन के बाकी साथियों में, जो जुरअत के साथ हमला होता है और मुकाबिल हमला भी उसी शिद्दत का होता है, उसके बावजूद 100 को वासिले जहन्नम करने के बाद अकबर वापस आते हैं, कहते हैं बाबा प्यास मारे डाल रही है, ये जंग के लिबास की गर्मी और किताल इससे, और बस आरजू यही है कि थोड़ी सी ताकत मुझ में और पानी के जरिए से आ जाए और मैं फिर वैसे ही हमला करूं। हुसैन के पास कुछ भी नहीं है, अंगूठी निकालते हैं, कहते हैं बेटा इसको मुंह में रख लेना, तुम्हारे जद तुम्हें सैराब करेंगे। दोबारा हमला करने के लिए चले जाते हैं, 200 से ज्यादा अश्तिया को वासिले जहन्नम करते हैं। उसके बाद ये हाल होता है कि इतने जख्मी हो जाते हैं कि घोड़े की गर्दन में है अपने हाथ डाल देते हैं, अस्सलाम वालेका या अबा अब्दुल्ला, ए बाबा मेरा सलाम कबूल कीजिए। घोड़ा आगे बढ़ता जाता है और जो हमलाश्तिया करते हैं, इस हालत में इमाम हुसैन पहुंचते हैं अकबर के किनारे, कि अकबर मुख्तलिफ जगहों से कटे हुए नजर आते हैं, इरबन इरबा पलटते हैं अपने जवानों की तरफ, हाशिमीन की तरफ, कहते हैं बच्चों अपने भाई की लाश को खैमगा की तरफ ले आना, वसयालमुल्लज़ीना ज़लमू अय्यामुन क़लबिन यनक़लिबून।